वन श्लोक है, बुद्ध के प्रति से विचार करने का। अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उद्देश्यों का अत्यंत संयम विनय के साथ समझदार से पालन करते हैं। 42 जो यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं। मायाम विद्यानाम विष्णु मायाधीशय महामुनि महाभागवतोराजन् महाभागवतोराजनं
और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जा सकता।
ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्येक उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यदि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता अथवा प्रत्येक व्यक्ति का प्रचल है कि वे ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यास और व्यास के सुखदेव आदि से आगे जाकर आ रही है गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करें।
उनकी सेवा करनी चाहिए।
लेकिन जैसे ही उनके प्राण चले जाएंगे क्योंकि तुम अकेले पुत्र हो और तुम फिर मुक्ति में लग रहा, लेकिन जब तक तुम साथ भी रहो इस तरह से आशा होने पर रहना कि सब कुछ मेरा प्राण है, मेरे माता पिता है, क्योंकि सबके परमेश्वर तो कृष्ण है, सबके परमेश्वर पिता परम पिता कृष्ण है, उनका ध्यान करते रहना। जिस प्रकार से अर्जुन को बताते हैं भगवान कृष्ण मई अर्पिता मन होती हम अनुस्मरण नहीं विचार, मेरे को ध्यान करते हुए अवस्था युद्ध करो, हर वो सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, हृदय सोचते रहेंगे मई अर्पिता मन होती मन होती तो मुझे अर्पित करती है, तो हर एक चीज कृष्ण में ही जाती है, चाहे गाड़ी चलाए और गाड़ी चलाते सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, भागवत श्लोक देने के लिए, भागवत श्लोक सुनने के लिए, या फिर आरती गाने के लिए, आरती सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, सारी चीज वो गाड़ी चला रहे हैं, मैटेरियलिस्टिक है, इतनी करोड़ों की जनता मैटेरियलिस्टिक की गाड़ी चला रही है, लेकिन हम जब चलाएंगे वो जल्दी कृष्ण में है, क्योंकि हम भगवान की सेवा भक्तों की सेवा करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी देवी कार्य बन जाएगा, क्योंकि वो फिर भगवान के कारण को उच्चारण के साथ में देवी का आ रहा है। इसी प्रकार से उनको समझाया गया और उन्होंने पूरा जीवन हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और अपने भगवान का ध्यान लगा के रखा, और जब उनकी माता का ध्यान हो गया तो उसके बाद वो जाकर क्या करते हैं, आश्रम में जाते हैं और फिर दृढ़ पूर्ण भक्ति का पालन करते हैं, और फिर शरीर छोड़ने के बाद में उनको जो आश्रम होता है शरीर प्राप्त करती है नारद मुनि का। कितने परम भक्त हैं जो बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी उत्तर अधिकारी पुत्रों में दक्ष प्रजापतियों में से, कुमार में से, चतुर कुमारों में से, संकादि ऋषि जो है उसमें से सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर खाली पिता और पुत्र का संबंध नहीं है, ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं नारद को, क्योंकि हमारे अगर शिष्य परंपरा देखें गुरु परंपरा तो उसके अंदर सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, जो हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ज्ञान जो है वो फिर नारद मुनि के पास आता है, और नारद मुनि इतने स्ट्रॉन्ग है अपने पिता के उद्देश्यों का पालन करने के लिए कि वो साक्षर गुरु बनते हैं, और फिर जो भक्त बनाते हैं, लेकिन इतने जोड़ी का एक भक्त बनाया उन्होंने ध्रुव महाराज, जिन्होंने 6 महीने में भक्ति प्राप्त करी, क्रैश कोर्स किया भक्ति का और इधर वैदिक नॉलेज क्रिएट हो गया, और प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में जिन्होंने भक्ति को प्राप्त कर लिया, और उन्हें तो वृद्धराज युग की जंगल में जानवर का वध करता है उसको भी ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो गया। तो इतने सारे भक्तों का इसमें वर्णन है 41-42 श्लोक में जो कि नारद मुनि के द्वारा हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर श्री रूपा जी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पूर्ण गुरु क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद ने क्लास में, पूर्ण गुरु तो जितने भी डिसाइपल बैठे थे उन्होंने सबने हाथ खड़ा किया, क्योंकि बड़े समय से भागवत क्लास उन्होंने रेगुलरली प्रभुपाद जी की, मैं बताऊँ तो उन्होंने हाँ यस यू कैन बी, सबके हाथ खड़े थे, प्रभुपाद ने एक ही तरह इशारा किया, तो बोले गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्य को कृष्ण प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद बोले नो, तो आधे हाथ नीचे गिर गए। उसके बाद प्रभुपाद ने फिर पूछे, अभी कोई बताया गुरु गुरु तो आधे हाथ अभी भी ऊपर थे, तो हाँ आप बताइए, तो उन्होंने बोला वो जो कृष्ण को तत्व से जानता है, यही व्यक्ति तत्व वेदा से ही गुरु है, तत्व से भी जानता है। प्रभुपाद बोले ठीक है लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट है, तो फिर आधे हाथ गिर गए, एक दो हाथ ले रहे थे, बोले अभी आप ही बता दो ट्राई कर लो, आप शायद नहीं बदल देगा। तो उन्होंने बोला कि वो जो अपने शिष्य को भक्ति में दृढ़ कर पाता है वो गुरु होता है। प्रभुपाद बोले नो नो नो, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद आप ही बताइए कि हु इज गुरु, गुरु कौन होते हैं। प्रभुपाद ने सिंपल सवाल कर दिया, गुरु इज वन हु फॉलोज हिज गुरु, वो गुरु होता है जो अपने गुरु को पालन करता है। तो यहाँ हम देखें तो देखिए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा को पालन करने के लिए कितने तत्पर है, उनके बताए उद्देश्य का पालन करें। तो कोई भी डिसाइपल अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो वो डिसाइपल बनता है, डिसिप्लिन तब रहेगा जब अपने गुरु का पालन करता है। हमारे शास्त्रों का नाम ही भगवान ऐसा भगवत गीता आ जाते हैं, जैसा गुरु बता रहे हैं जैसा गुरु कर रहे हैं ऐसा पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है इसमें बता रहे हैं कि बहुत ही ओबीडियंट है, इसमें यहाँ पर लिखा है अनुव्रतम अनुव्रतम अत्यंत आज्ञाकारी, पिछले श्लोक में बताया है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं फर्स्ट चैप्टर के फिफ्थ चैप्टर में मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज जो होती है भौतिक वाले जीवन में उसको रेगुलेट करना चाहिए इसकी तरफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ। अगर वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच रही है हमारी सारी सारी एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, चाहे इंटरनेट की चाहती चाहे गाड़ी चलाना या अपने पैरों का इस्तेमाल करना, हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल जो कि भौतिक शरीर को मिले हैं, अगर हमारा इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया गया तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो क्या होगा? तो बात बता रहे हैं श्रम केंद्र ही केवल हो सकता है कि हम उनसे धार्मिक कार्य करने लगे, एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल बना लेंगे, चार नियम का पालन करेंगे, 16 बार जप करेंगे, एक कर्म कांड की तरह। तो इसमें बताया गया है कि कर्म कांड ज्ञान कांड और उपासना कांड मेरे धीरे धीरे गलत है तथा ब्रह्मा की उपासना कांड दक्षिण में कर्म कांड और पुनः में ज्ञान कांड। तो जो इस प्रकार से इतने सारे कांड हम सीखते रहे लेकिन जब तक भक्ति नहीं करते तब तक सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं कर सकते भगवान के। और भक्त करना जो है वो इसके अंदर बदलाव नहीं है कि हम ये फॉलो करें ये फॉलो करें, जैसे जो प्रभुपाद ने बताया जस्ट फॉलो व्हाट योर गुरु से। हम लोग एग्जाम्पल प्रभु जी वो वाले गुरु महाराज ऐसे करते हैं, वो वाले गुरु महाराज ऐसे करते हैं, वो संप्रदाय ये होता है, वो भी तो धार्मिक है, वो भागवत कथा करते हैं लेकिन दादरी चल रही है, वो भी तो कथा कह रहे हैं, वो भी तो कृष्ण है, उसमें इसमें क्या फर्क? जगजीत सिंह जी तो भजन गाते हैं जय राम, उसको सुनने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये है जिसने प्रभुपाद बताया है जस्ट फॉलो योर गुरु। अभी जिसने गुरु जिसने गुरु नहीं प्राप्त किए हैं कौन में उनके सर्वप्रथम गुरु कौन हुए हैं? लेकिन कभी इस बात का भरोसा नहीं कर पाते कि साक्षात रूप में बैठे हैं। हमें क्या लगता है विग्रह के रूप में है कि तो एक मूर्ति है, पाषाण है, क्या बोल सकते हैं? सीता पिता राम लक्ष्मण हनुमान राधा गोविंद है, उनको हम दर्शन प्राप्त करते हैं तो लगता नहीं है कि ये भगवान है, सिर्फ एक मूर्ति है। तो अभी पीछे देखा कि गुरु द्वारा में लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने संघ किया 1975-77, तो उसमें से काफी सारी चीजें हमें प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने एक चीज बताया कि प्रभुपाद जी हमेशा पूछते थे कि हर एक कार्य को चेक करना चाहिए आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप देखें भक्ति में आने के बाद भी 6 साल 10 साल होने के बाद भी हर एक कार्य को हम क्यों करते हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। क्या हम उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? चेक करना चाहिए। अभी देखिए हम आगे क्यों करते हैं, अरे प्रभु जी महाराज करेंगे तो वर्ष में चले जाए क्योंकि महाराज कर लो हरे नाम लेके जाओ तो हरे कृष्ण देखते हैं। इस डर से करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रभुपाद जी को पसंद है, इसलिए नहीं करते क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम बचना चाहते हैं डर के बावजूद। और अगर देखें तो हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं इसलिए ताकि हमारे पास ज्ञान आ जाए, तो फिर हम थोड़ा सा भूल करते तैयारी छोड़ दी हमारे पास इतना ज्ञान है, अगर मैं दूसरे लोगों को हम भिन्न है इसलिए हमारा पढ़ इसलिए भी पढ़ रहे कि हमारा शुद्धिकरण हो, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अगर इस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक क्या है श्रम लेने के लिए बाबा भगवान तो हमेशा चेक करना चाहिए कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी प्रसन्नता के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो ये हमेशा चेक करना। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद कि ये सब आगे क्यों नहीं कर पाता क्योंकि हमारे अंदर जो है कृष्ण प्रेम तो बचपन से है, जब हम पैदा होते हैं तो हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण का प्रेम हमारे पास है। जैसे कि इंजीनियर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, रात को सोता है 12 बजे तो इंजीनियर है और सुबह जब 6 बजे उठ रहा है तो भी वो इंजीनियर है। जितने के सोया था उसी देर में वो राजा बना, उसे शेर में खाया और बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के उसके साथ कार्य अलग हुए, लेकिन जब 6 बजे उसको उठाया उसकी बैठ में उठो और मुझे उठो तो वो क्या है इंजीनियर है। ऐसा तो नहीं होता कि वो इंजीनियर से डॉक्टर बन जाता है, अरे आज मैं डॉक्टर हूँ, नहीं वो इंजीनियर होता है। तो प्रभुपाद ने कौन में नाम लिया अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या करना है कि सुप्त अवस्था में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको जागृत करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, आप ऑलरेडी डिवोटी है भगवान जीवन सब मेरे भगवान जो है सच्चे कारण है, तो उनकी जो आत्मा है जो अंश है वो भी सच्चे कारण है, लेकिन फिर हम इतने निराश में जो रहते हैं, इतने आसक्त में जो रहते हैं, इतने चिंतन में जो रहते हैं, क्योंकि बताते हैं कि जैसे एक लाइट है, उस लाइट के ऊपर कवर लगा देंगे पीले रंग का तो पीली लाइट आएगी, ब्लू कलर का कवर लगाएंगे तो ब्लू लाइट, ब्लैक तो ब्लैक लाइट। लेकिन लाइट से तो सब कुछ क्लियर है, फिलामेंट से आपको क्लियर रहेगा, अलग अलग कलर की लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अलग जो है वो अलग अलग प्रकार की लाइट है और उसमें अलग अलग प्रकार का रंग नहीं लगा है। किसी के अंदर काम लग रहा है तो वो काफी व्यक्ति लगता है, किसी में लोभ ज्यादा है तो लोभी व्यक्ति लगता है। वैसे क्योंकि वो तो लोभी, हम लोभी नहीं है, तुम कामी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ अनर्थ है, किसी के कारण से गर्भ संसार में है, वरना तो मुक्त होकर भी धाम में भगवान के चरणों में। बताया कि ये जो है आपको अनर्थों को खत्म करना है, प्योरिफिकेशन करना है, कौन सा करना है, अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, सोती अवस्था से जाग जाना है, भक्त से अपने वापिस अवस्था में जाना है, कुछ भी नया आइडिया नहीं करना, कुछ नया नहीं करना है, बस हरे कृष्ण नाम का जप करते रहिए और क्या होगा, शुद्धिकरण हमारे हो जाएगा। तो हम जो है लोग और लालच के कारण नहीं कर पाते, छोटी सी स्टोरी बताएंगे उससे हम समझ पाएंगे किस प्रकार से व्यक्ति चाहता कुछ और है और दूसरा कुछ और है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं तुम्हारा प्लान नहीं चलता, कृष्णा का प्लान चलता है। हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं हमारा तुम्हारा प्लान नहीं चलता, कृष्णा का प्लान चलता है। तो ऐसा यदि हम लोग बोलते हमारा प्लान चलता है तो भी ऐसा ऐसा चल लेंगे, इतनी इतनी बुक्स चल लेंगे थोड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, थोड़ी इस बार तो मतलब हम कर लेंगे 2 लाख बुक्स कर लेंगे, थोड़ी हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लिया, पानी मिला लिया, कुछ दिन बारिश हो गई, वार्ड में नहीं मिला, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उसके घर में कुछ फायर हो गया, चौपट हो गया, मैंने सब क्या हुआ, 5,000 लोग चलेंगे, 2,000 लोग, ये सारी प्रॉब्लम क्यों होंगे, हम अपना प्लान बना रहे हैं, कृष्ण के चरण में अगर चले जाए कृष्णा भैया डिपेंडेंट कर लिए जितना चाहो उसमें करो, बस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा नाम हो, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम तुम्हें सब लोगों की तारीफ करें, गायन करें, इसलिए कर रहे हैं कि हम तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके शुद्ध प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये भाव अगर जागृत हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ चले जाए भगवान से जाके गिफ्ट देने लगे, लो 2,25,000 रुपए लो तुम्हारे अकाउंट में डाले। लेकिन हम जब टारगेट ओरिएंटेड होकर चलते हैं तो फिर सारी चीजें मैटरिस्टिक हो जाती है, स्पिरिचुअल नहीं होती है। भाव रखना चाहिए और सेवा के सभी प्रकार की ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। तो एक बार एक जैसा हुआ जो लोमड़ी होती है उसकी जाति का होता है, जैसा जानते हैं व्यक्तियों के सियार, तो सियार था और उसको एक बार भेड़ों का ब्रेड कहीं पड़ा हुआ मिल गया जंगल में, भेड़ होती है ना शीप, उसका एक ड्रेस पड़ा हुआ मिल गया और उसने वो पूरा ऊनी ऊन पहन लिया, सर्दी का टाइम चेंज में गया था जैकेट, तो शीप बन गया पूरा और शीप बनकर फ्लॉक ऑफ शीप मतलब एक ढेर था वहाँ ढेरों का, उसमें जाकर वो ले गया और उसने क्या सोचा, ये आसान तरीका है, 20-25 भेड़ है इनके बीच में रहूंगा, रोज रात को जब ये चरवाहा जो है ताला लगा के चला जाएगा तो फिर मैं भेड़ को रात को खा लूंगा, तो अच्छा खासा 20 दिन का डिनर हो गया और ये भेड़ भी समझते हैं कि हमें खाता कौन है क्योंकि हम तो छुपा रहा हूँ उनकी ड्रेस में, तो कोई थॉट से उनके बीच में चला जाता है और जाने के बाद में क्या बोला जिस टाइम जाता है तो चल रहा रात को ताला लगाने से पहले रोज काउंट करता था कि कोई चोरी ना करे, तो जब वो गिन रहा था तो उसने गिना 1, 2, 3 ऐसे ऐसे देखा 25 उसके पास भेड़ थी, एक बार 26 थी 26, तो टेंशन में आ गया 26 कैसे हो गए, बोला भगवान ने आज कृपा कर रही एक भेड़ ऐड हो गई है, तो सोचता रहा जितना सोच रहा था जिससे उसके राजा के सिपाही आ गए गाँव के और डॉक्टर बोले एक काम करो तुम जो है एक भेड़ राजा ने मंगवाई आज वो भोजन करना चाहते हैं भेड़ का, तो भेड़ का मांस खाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि तुम दे दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए जो चाहें, मैं कैसे और राजा की भी क्या बोलो आए तो उन्होंने देखा कि भेड़ है, देखा सबसे मोटी भेड़ जो थी जैसा मोटा था तो उसने ऊपर से कोट कर आखिर भेड़ और भेड़ को उठाया और लेकर चले, जैसे जाने लगे तो घबरा गया कि अरे आप ले जाओ वो पेट भी नहीं भरा ऊपर से मेरी गर्दन भी काटी जाएगी, ये तो वो गलत बात है, तो भागने लगा, भागा तो उसके पीछे पकड़े सिपाही इधर से जो है चारों तरफ से घेर लिया उसको और फिर एक ने उसको तलवार से उसकी गर्दन काट दी, गर्दन काट दी तो वो मर गया। अभी देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि इसमें क्या थे चीटिंग कर रहे क्या चाह अपना वो करना चाह, तो हम देखते हैं हम भी क्या करना चाहते हैं चीटिंग कर रहे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है भगवदगीता में चार बताए हैं प्रारंभ में हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हमारे अंदर है, लोगों को धोखा देना, हम जैसे ये रोटी को पतीलक लगा लिया और हम बोलते हैं मैं भी रोटी नहीं, कीटिंग है ना, अंदर से देखा जाए तो बिल्कुल मल भरा हुआ है, माया उसकी बंध दी है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसका डिफरेंस हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट किया होगा तो ओपीडी में बैठे हुए हैं लोग, और हम जो है अंदर एडमिट हो चुके हैं आईसीयू में, हमारा कटिंग सर्जरी चल रही है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। शिशु सीता राव आपने शिशु राधा दोगे भगवान, तो हमारा जो है वो अभी चल रहा है ऑपरेशन, बस इतना डिफरेंस है। बाकी कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, इस प्रकार में तो दिल पुरुष है, जैसे प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, वही लोग हैं जो कि सक्सेसफुल ऑपरेशन करके बाहर निकले हैं, और फिर बाहर लोगों को जाकर बता दिए हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, जो प्रभुपाद ने बनाया है कौन। लेकिन हम तो अभी एडमिट है अंदर, ऑपरेशन चल रहा है, सीरियस सीरियस दिखी रहा है, पता चल रहा है किसी से, लेकिन सबको लगता है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो पता चलेगा मुझे आपको कौन सा बीमारी है, मुझे कैंसर है बोलिए, मैं तो पिछले 6 महीने से एडमिट हूँ, 2 साल हो गए मुझे दवाई खाते हुए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण रोज करता हूँ, वो दवाई नहीं चल जाती है, सुबह गोली लेने को बोला डॉक्टर है, शाम तक याद नहीं रहती, रात को भी लगता है गोली नहीं खाएगी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, तो फिर खा लेता हूँ। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास बीमारी है, और सबकी बीमारी है, सबसे बड़ी हमारे अंदर बीमारी है, तो वो बीमारी क्या है कि हम कौन ही आते हैं कि सब लोगों को क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो वो भी हमें बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो थोड़े दिनों में विश्वास हो जाता है कि बाकी सब तो है ये प्रशांत मुकुल दास और मैं कौन हूँ प्रभु, तो ये मेरे अंदर भावना आने लगती है, तो ये इस प्रकार सबके अंदर अंदर ये भावना आती है कि मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, और फिर वो जी भी चला जाता है थोड़े समय बाद। मैंने देखा बहुत सारे दोस्त हैं अभी अभी गए थे 1 साल पहले, और पहले हम प्रभु जी बोलते थे, और अभी थोड़े समय बाद वो बोलने लगे भाई कृष्ण प्रभु भाव ले लू, ठीक है ठीक है, तो वो भूल जाते हैं कि हम ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, वहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर हम अलग हो गए, बहुत सारी जनता से कितने सारे लोग आए हैं, जो 1000 लोग आए, 800 लोग आए, सैटरडे लव बीच में, तो ये सब तो नए हैं, हम तो पुराने हैं, 1 साल से आ रहे हैं गुरु जी, आई एम प्रभु नाउ एंड यू पीपल आर कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं दास से कृष्ण के, उस व्यक्ति के नहीं है ना, तो ये भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन क्या करता है जो व्यक्ति माया में बंध रहे हैं वो जल्दी से दूर हो जाता है ना, इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसा बोला चैतन्य चैतन्य में लिखा है कृष्ण भूलिया जी भगवान क्षा करे हम पाश्चात माया सारी भगवत ले जाते हैं, उसको माया प्रकार से पकड़ लेती है। 18,000 लोग यहाँ होंगे, फिर आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा, और फिर 21 श्लोक रहेगा, पहला श्लोक ही याद रहेगा, भगवत गीता में क्या होती है, भगवत गीता आवर्तन क्या होता है पूछेंगे, मेरा नाम क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति में क्या गया भोग मच्छा करे भोगने की इच्छा उसके अंदर थी, और उसमें जो 41 श्लोक है लिखा है सुश्रुष्ट मानव, सुश्रुष्ट मानव का मतलब है वो व्यक्ति जो सुश्रुत हियर श्रवण जो सुश्रुत शब्द है ये श्रवण क्या है, श्रवण मतलब सदैव एवं मेरे ऊपर ऑलवेज रेडी टू कर, तो प्रहलाद नंदन स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला हियरिंग प्रॉपरली मीन कंसेंट देखे, तो सुनने का मतलब था ये नहीं कि हमने सुना कि प्रभु जी हियरिंग कैसे कर लिए, प्रभु जी बहुत बढ़िया 4 घंटे गाने दो पिक्चर सुन लेता हूँ बस बढ़िया होता है, या मैं शास्त्रों को छोड़ कर भजन सुनने शुरू कर देगा, डिफरेंस कभी है मोड बदल गया है, अभी ट्यून बड़ी अच्छी लगती है, वो सुनता हूँ प्रभु जी का भजन को उनका लेक्चर दिए तो ट्यून अच्छी लगती है, आवाज अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी कृष्ण प्रेम भागवत में अगर ये नहीं होता कंसेंट्रेटली सुनता है क्या फिलोसफी ऑफ कृष्णा, और उस फिलोसफी को सुनने के बाद चेक करना चाहिए कि अगर मेरे अंदर वो भाव हो पाए हो जीवन कहते कृष्ण दास, क्या मैं दास हूँ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देखें तो सारे के सारे भक्त आते हैं भगवान को ऑर्डर देने के लिए, है ना, भगवान इस बार जो है बस जो है ऐसा करवा देना, इस बार ना ऐसा कर देना भगवान, इस बार ऐसा करना सीधा प्रमोशन करवा देना, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सब कुछ बढ़िया ही बदलाव आपकी इस बार, तो ये हम थॉट नहीं लगाते हैं भगवान के साथ, लेकिन भगवान कौन है स्वामी और हम कौन है दास, लेकिन ये भाव है कभी हमारे घर में देखा है काम करते तो काम वाली आती है लेट आती है वो ऑर्डर दे कल से देखो ऐसा करना जब मैं आऊँ 9 बजे झाड़ू लगाना है तो टीवी चला दे नॉट एज कन्वीनियंट उसके बाद में मैं करूँगा मेरी ये भोग करने की इच्छा है, तो हम कहें कि देखो ये पैसे के लोग बाहर निकल जाओ यहाँ से, ये लोग पैसे 200 रुपये 300 रुपये है सैलरी और बाहर चले जाओ, बोलते हैं, लेकिन अभी हम क्या है तो दास, रोज बोलने दास दास धीरे चलो दास मैं दास और वो स्वामी, लेकिन ऑर्डर उनको करते हैं तो वो दास है हमारे लिए तो हम स्वामी उल्टा कर रहे हैं। तो भगवान से एक बड़े इसलिए बोलते हैं अंत अभिलाषी का नष्ट कर गया है, बिल्कुल अभिलाषाओं को जीवन में चलते भगवान के शरण में चले जा रहे हैं। हमारे को तो कोर्ट पूरी भगवान ने प्रचार बनाया है कि हमें भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी और कोई हमारे पास चाह रहे हैं। ये हाथ है बोलते हैं कि हाथ से क्या कर सकते हो आप, इस हाथ से भोजन का प्रसाद का टुकड़ा तोड़ोगे और मुंह में डालना ही पड़ेगा। ये हाथ सोचे कि मैं यहीं से रोटी खा लूं और सेटिस्फाइड हो जाऊं ऐसा कोई नहीं करता, तो वो हमें मुंह में डालना पड़ेगा। तो अगर भगवान के अंश है, ये हाथ हमारे हमारे शरीर का अंश है, तो इसका कर्तव्य है कि इसकी सेवा करना। तो अगर हम भगवान के अंश है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, इसमें अभिलाषाएं भगवान पूर्ण कर दें तो भगवान की इच्छा, नहीं करें तो भगवान की इच्छा। हो सकता है कि हाथ मुझे अच्छा लगे, बड़ी सेवा कर रहा है, ठंड ना लग जाए, लग रहा है तो ये मेरी इच्छा है, नहीं तो मैं भी सारा बताता है कुछ भी हो सिर्फ करना ही पड़ेगा, प्रसाद तो खिलाने पड़ेगा। उनके बाद में भी 9 बजे तक लोग देखने लगे थे कितने गए खत्म हो गया। ये तो श्रवण की रुचि है हमारे, और लेक्चर जब हम ईयरफोन से सुनते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है, हमें जब कॉल करते हैं कोई कॉल तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया, तो कोई आवाज है इसको बंद कर देते हैं, कॉल होकर एंड कर देते हैं। कम से कम जैसे श्रम होगा मतलब 1 घंटे का श्रवण मिनिमम रोज हमको करना चाहिए, तो वो ध्यान पूर्वक होकर एकाग्र से होकर और के अलावा कुछ भी हमें संसार में भूल जाना चाहिए। भागवत क्लास लेकर उसने गुरु महाराज है तो लेक्चर दे रहे, फिर भी मोबाइल अलग अलग धुनों में बैकग्राउंड जैसे दिया जा रहा है, बंद कर देना चाहिए। अगर हमारी एकाग्रता है, अगर हम जाग पड़े हैं कि भगवान के दास हैं, तो हमको फिर क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और फिर श्रवण होगा तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या होगा, कीर्तन होगा। कीर्तन का मतलब क्या है कि हमने जब श्रवण किया कथा सुनी तब हम बोल पाएंगे। और सबसे बड़ा कीर्तन क्या होता है, मान सकते हैं कोई सबसे बड़ा कीर्तन क्या होता है, कीर्तन का मतलब क्या है, सबसे बड़ा कीर्तन का अर्थ होगा बताते हैं आचरण करना, अपने आचरण से सिखाना, अपना आचरण प्रभु जीव से सिखाया, अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु जो जीवों को सिखाया है ना। भगवान को क्या जरूरत थी कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना, तो आए थे पांडव चले कृष्ण बनते, फिर क्यों आ गए, इसलिए आए हैं ताकि लोग भूल गए कि कृष्ण को कैसे भजना है, कैसे उनकी भक्ति करनी है, वो सिखाने के लिए भक्त रूप में भगवान जो है द्वारा अपने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवत गीता में बताते हैं यश्च अतराति श्रेष्ठा तत्सत पितरो जना यस्य प्रमाणा कृतो लोकस्य अनुवर्तते, जिस प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसी प्रकार से नीचे के लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हमको कुछ समय हो गया है स्कॉल में आते हुए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने आचरण को इस प्रकार बनाना चाहिए कि बाकी लोगों को जरूरी नहीं कि लेक्चर देने का मौका नहीं मिला, प्रभु जी हमें तो कभी क्लास देने का मौका नहीं मिलता, तो फिर हमें भक्त बनने की क्या जरूरत है, क्यों श्रवण करें, हमें कीर्तन का मौका नहीं मिलता, मंदिर के पुजारी हम लोग गा लेते हैं या आस पास जो रहते हैं हमें मिलता नहीं कि मैं कीर्तन क्यों करूँ। तो कीर्तन इसलिए करना जरूरी नहीं है कि हमें कोई सेवा मिली इसलिए कीर्तन, कीर्तन इसलिए करना है, सबसे बड़ा कीर्तन है अपने आचरण को ऐसा बनाए कि जो व्यक्ति आपको सड़क से चलता हो देखे वो प्रभु जी आप कौन से हैं, इधर बनाए जाओ प्रभु जी आपने चलती मतलब धोती कुर्ता हो अच्छा कौन से हैं, आचरण ऐसा हो कि व्यक्ति देख कर आपको पहचान जाए। कुछ लोग तो बताते हैं, कुछ लोग प्रभु जी मुझसे पूछते हैं आप कौन से कहीं पाते, प्रभु जी हम भी कौन से ये ईश्वर को अंदर से निकाल कर कंटी बाहर हैं, आप आते भी देखते हैं, हाँ प्रभु जी हमने 8 साल पहले दीक्षा ली थी, उसके बाद फिर हम थोड़ा वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर एक बार विदेश चले गए, लौट के आए भी अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं, यहाँ कोई मंदिर है आप पर, यहाँ मंदिर आप आया तो एक सब क्लास में है बाद में अच्छा अच्छा ठीक है भैया आएंगे, लेकिन मतलब दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को माया कैप्चर कर सकती है, कभी भी कहीं पर भी मतलब ईवन सन्यासी बनने के बाद भी व्यक्ति को माया कैप्चर कर सकती है ना। तो भोग की वासना जब सुधरेगी तब तुम माया से सुधरेगी। तो अपने आचरण में रखो क्या करना चाहिए, भक्ति को न करना चाहिए। जैसे समझते हैं दो एग्जाम्पल से जो मुझे याद आते हैं हमेशा, उसमें एक एग्जाम्पल हमारे खुद के गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। महाराज एक बार प्लेन में चल रहे थे और प्लेन में जब चल रहे थे तो अचानक से दोपहर के 12:30 बजे का टाइम था, तो 12:30 बजे महाराज ने उठे और फिर उठकर अपनी फ्लाइट में अपनी सीट से तो वहाँ पर सब भक्तों ने सोचा कि अपना दंड जो है वो पकड़ा रहे हैं तो शायद वॉशरूम जा रहे होंगे। लेकिन महाराज खड़े हुए, महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और फिर खड़े हुए वहाँ पे। तो भक्तों ने जो बात किया असिस्टेंट से सेक्रेटरी से उन्होंने पूछा महाराज आपने ये क्या किया, यहाँ पर दंडवत हो गया प्लेन में, यहाँ तो एयर होस्टेस है पायलट है। तो महाराज बोले कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ एयर होस्टेस है, पैसेंजर है और पायलट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कृष्ण है, इसी को देवी देवता है, यहाँ पर जो है गुरु परंपरा है और सबसे मुख्य मेरे प्रभु मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद मेरे साथ में है ना। और हम सुबह मंगला आरती में गाते हैं ध्यान सुगंध वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, हमें अपने गुरु को जो है जिनका प्रसाद जो है भगवत प्रसाद है, यत्र प्रसादात् भगवत प्रसादात् यत्र प्रसादात् ब्रह्मति कर, उसके बिना कोई गति नहीं है। ऐसे गुरु को हमें देखकर 3 बार प्रणाम करना चाहिए। तो मंगला आरती में जब मैं टेंपल में था मैंने प्रणाम किया, लेकिन अभी जो है साथ भोग आरती मतलब दोपहर की आरती हो रही है तो इस आरती में मैंने प्रभुपाद को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि 3 बार प्रणाम करना तो आपको बाधा कर जाएगा, फिर प्रणाम कैसे करूंगा। मैंने भी प्रभुपाद को प्रणाम किया। ये होता है आचरण है। तो सारे के सारे भक्तों को लगा वो हम कितने वो है, हम समझ ही नहीं पाते थे प्रभुपाद के बिगड़े के सामने जाकर सोचते हैं प्रभुपाद जी का बिगड़े है, प्रभुपाद साक्षात है। यहाँ पर अभी गुरु पूजा हो बोली हो तो हम एक दूसरे को लेकर हंसते हैं मजाक करते हैं, लेकिन अगर कभी साक्षात यहाँ पर गुरु वाले बैठे तो सब सीरियस हो जाएंगे ना। तो सोचते ही कभी शिला प्रभुपाद बैठा है यहाँ पर बैठे हुए हमारे सामने, हर बुक के अंदर बैठे हुए प्रभुपाद, हम सीरियस नहीं हो पाते, बड़ी कॉमिक लाइफ जी रहे हैं ना। कॉमिक का मतलब ये नहीं कि हम हंसे नहीं, हंसना चाहिए जॉली नेचर होना चाहिए सारे भक्तों के साथ में, लेकिन हंसने का मतलब ये नहीं कि हम भक्ति को मजाक में ले रहे हैं, भक्ति बहुत सीरियस इशू है। तो बहुत ध्यानपूर्वक उसे जीवन में अपनाना चाहिए है ना। तो ये बताया है और एक एग्जाम्पल है जिन्होंने दादा को समय मारा था, उनके डिसाइपल में दादाजी बॉम्बे गया वो बता रहे थे कि महाराज कई बार हिमालय रेंजेस में हिमालय की चोटी जो है वहां पर कथा करने गए थे, और जब महाराज वहां कथा कर रहे थे तो कथा का समय था दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक। तो सुबह के समय खाने का बहुत ठंडी थी वहाँ पर, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो सारे भक्त में वो मंगल आरती में नहीं आ पा रहे थे, 5 बजे उठते थे स्नान करने के लिए जा रहे थे, जब वो स्नान करने के लिए एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दादा जो है महाराज जो है वो पहाड़ के ऊपर से बिना किसी कंबल के सिर्फ ऐसे एक नॉर्मल चादर ओढ़कर ऊपर से आ रहे हैं सुबह 4:30 बजे। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ पहना नहीं, तो बाकी भक्तों ने तो मुंह से खा लिया कि अभी तो धोखे में ब्रश कर रहे महाराज देखने से क्या सोचेंगे कि हमारे गुरु हैं वो। तो किसी भक्त ने बताया महाराज तो अभी नहीं, महाराज तो 2 बजे उठे थे, 2 बजे उठकर स्नान करने के बाद फिर वो जप कर रहे ध्यान कर रहे अपनी साधना कर रहे ऊपर गए और फिर ऊपर से एकांत स्थान में और फिर मौत नीचे आ रहे हैं कथा के लिए आ रहे हैं। तो वो शरार हो रहे थे, वो बता रहे हम 5 बजे उठकर हम सोच रहे थे हम बेस्ट हैं क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे गुरु महाराज जो एजिड है वो 2 बजे उठकर अपना ध्यान अपने जप कर नीचे उतरते हैं पहाड़ ठंड में। तो ये आचरण है, एक भक्त को इस प्रकार का आचरण देना चाहिए कि बाकी लोग जो है उसको एवरेज फॉलो करेंगे तो भी प्रचार कथा करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग इसमें प्रसन्न हो जाएंगे फॉलो करने लगेंगे। श्रीला प्रभुपाद की स्माइल के ऊपर एक बार एक माता जी बता रहे थे कि मैंने प्रभुपाद से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अपनी लाइफ में प्रभुपाद की स्माइल में, और मैंने एक बार प्रभुपाद को देखा था एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी जा रहे थे और सारे के सारे भक्तों ने उनको घेर रखा था जय प्रभुपाद सारे लोग चल रहे थे और प्रभुपाद ने मेरे से चिल्लाया जय प्रभुपाद और प्रभुपाद ने मुड़कर देखा और स्माइल कर दिया। जब स्माइल किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बस मुझे इसी व्यक्ति के लिए अपना जीवन में ट्रैवल करना है और 40 साल हो गए मैं इस फोन को सर्च कर रही हूँ माता जी को जाकर तो 40 ईयर तक वो सर्च कर रही है मतलब एक स्माइल के लिए, कभी गुरु से साक्षात मिलना नहीं हुआ और क्या है कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी कोई क्वेरी नहीं करी, इतना श्रद्धा है और इतनी प्यूरिफिकेशन है प्रभुपाद जी के अंदर, अपने आचरण से ही इतने खुश है उस प्रोसेस को पालन करके कि उसको देखने मात्र से लोग पालन कर रहे हैं, आचरण को सिखा रहे हैं। तो ये है कीर्तन करना। भक्ति जान सिंह महाराज बोल रहे हैं इसी को कहते हैं कीर्तन करना, श्रवण करो और कीर्तन करो। और कीर्तन हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपरली श्रवण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमारे घर में कोई नौकर है और उसको हम बोलते हैं कि देखो शाम पानी ले आए, तो अगर वो ले आता है इसका मतलब उसने सुना, और अगर नहीं करता तो नहीं सुना। तो इसका मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने बोला कि आप टोला वाला का जब करिए, अगर नहीं भी कर रहा है श्रवण, तो इसका मतलब वो कीर्तन मतलब उसका पालन करेगा। अगर वो नहीं सुन रहा है तो फिर वो नहीं करेगा। और दूसरा, अगर वो श्रवण करेगा बोला पानी ले आओ तो उसके पास क्वेश्चन हो सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठंडा लगा या गर्म लगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति टोला वाले का जब नहीं कर रहा है तो उसके पास या तो पढ़ना चाहिए या उसके पास प्रश्न होना चाहिए कि मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ तो कैसे करूँ, ऐसे करो या ऐसे करो, है ना। तो वो प्रश्न पूछे या वो पालन करें। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कथा में आता है सोता है चला जाता है, श्रवण नहीं करता है। श्रवण करने का मतलब है उसका पालन करना। तो बताते हैं कि कीर्तन करने के बाद में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन आता है ना, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन, जिसकी हमने अभी चर्चा करी। ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान हमको बुद्धि देते हैं समझने के लिए। अगर हमारा श्रवण और कीर्तन कीर्तन मतलब प्राप्ति पालन अगर अच्छा है तो फिर हम भगवान के दास हैं, इस बात को हम जीवन में समझ पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन क्या चला जाएगा, श्रम के लिए केवल। और हम इसमें बताते हैं इसी श्लोक में शीलेन, शीलेन सबका अर्थ है सदाचार। सदाचार से मतलब गुड बिहेवियर। तो गुड बिहेवियर का मतलब जो है बताया थे कि अपने को हमेशा भगवान की सेवा में लगा कर रखना, अपनी तरक्की के लिए हो, जैसा अमरीश महाराज लगा कर रखते हैं, है ना। तमें कृष्ण पदार्थ वर्षांति वैकुंठ गुणान अनुवरण है, हमेशा भगवान का गुण वर्ण का वर्णन करने के लिए, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, हमेशा सीखने की अभिलाषा रहे, अपने गुरु का एवरेज पालन करने की अभिलाषा, तब ये शीले गुड बिहेवियर से लगा है। गुड बिहेवियर का मतलब ये हमारा बिहेवियर अच्छा है या हमारी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है तो हमारा ये गुड बिहेवियर है। गुड बिहेवियर का मतलब है कि जो परंपरागत चीजें बताई गई है आचार्य के द्वारा उनका हम पालन करें। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि भक्तिदास जी महाराज ने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की है ना, और श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की, डबल गुरु से आगे और ज्यादा सेवा करने की अभिलाषा। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो क्या हो पाएगा कि हम अपने जीवन में समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है और हम कौन से भगवान के रिश्तेदार हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप हर जगह पे राधा कृष्ण के मंदिर क्यों खोलते हो, इतने सारे भगवान हैं, गणेश जी के मंदिर हैं और देवी जी के मंदिर हैं, ये मंदिर नहीं खोलते आप, कृष्ण 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 क्यों करते हो। तो प्रभुपाद ने बोला बिकॉज मैं टेम्पल बना रहा हूँ, बिजनेस स्टोर नहीं बना रहा हूँ, बिजनेस स्टोर मतलब मॉल। अभी हम जाए यहाँ पर मॉल है कौन सा, क्राउन इंटीरियर, क्राउन इंटीरियर मॉल में क्रोमा रिलायंस बिग बाजार सारे शॉप होते हैं। उसी प्रकार से टेम्पल का मतलब लोगों को लगता है इंडिया में और भी देशों में जहाँ पर हिंदू समाज है कि क्या होता है टेम्पल का मतलब कि अपनी इच्छा अभिलाषा की जो डिमांड है वो लेके जाओ, कुछ पैसे प्राइस पे करो, 20 रुपये 40 रुपये मंदिर में डालो गुल्लक में, और अपने अनुरूपी अरे कृष्ण भगवान तो वो हैं जो 16,000 राजियों के साथ रहते हैं, राग करते हैं, गणेश जी बढ़े हैं, कोई इनको कोई मतलब फोन है और आराम से एकदम रहते हैं रिलैक्स होके, ये भगवान बढ़े हैं। कोई कहता है दुर्गा माई देखो हमेशा तत्पर है सेवा करने के लिए, हाथ में रखते हैं त्रिशूल रखते हैं, तो सबको अलग 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 थॉट है। तो जो प्रोडक्ट पसंद है प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं, मुझे ये पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर भी दिखते हैं, यहाँ पर भी मंदिर में 2-3 दैनिक और टेम्पल है, तो लोग आएंगे कि फिर वहाँ पर शिव जी में जल चढ़ाएंगे, उनको प्रोडक्ट पूरा हो गया, अपनी डिमांड पूरी हो गई, वहीं से बाहर आने के लिए। तो प्रभुपाद का बिजनेस कॉल है बिजनेस स्टोर नॉट एज टेम्पल। टेम्पल मतलब यहाँ पर भगवान की सेवा, वो तो भगवान है ही नहीं, वो कौन है, डैनी गॉड देवी देवता है ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंदम विघ्नम अनाम जाने गोविंदम सर्व कारण कारण। तो यहाँ बताया निश्चित शक्ति धर्म दे रहे हैं। प्रभुपाद ने रिपोर्टर को श्लोक से समझाया, प्रभुपाद बोल रहे हैं आप भगवद गीता पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कौन है सुप्रीम पर्सनैलिटी? सुप्रीम शब्द में कंपैरिजन नहीं होता, मेरे वृंदावन में कौन सुप्रीम है ऐसा नहीं होता, कॉम्पिटिशन ही नहीं है। सुप्रीम मतलब जो व्यक्ति टॉप मोस्ट है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी बोल दिया क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि कृष्ण ही क्यों सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम गॉड का मतलब ही है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे टॉप में है, तो कृष्ण है, उसके बाद फिर सब उनके सर्वेंट है ना, दास है। फिर प्रभुपाद ने किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप इतने महंगे मंदिर क्यों बनाते हो, अगर आप राधा कृष्ण मंदिर बनाते हो इतने महंगे क्यों बनाते हो, छोटा सा मंदिर बना दो, थोड़ा सा घास फूस लगा दो और फिर उसमें कीर्तन करो बैठ के, आप लोग को कीर्तन नहीं आता है, इतना बड़ा महंगा मंदिर क्यों बनाते हो। तो प्रभुपाद जी बोले महंगा का है, वी हैव जस्ट एक्सपेंड यहाँ पर हमने कितने मिलियन डॉलर, हमने सिर्फ लाख डॉलर किए हैं, अभी तो पूरे समाज के पूरे ग्लोब में करोड़ों रुपया है, मिलियन रुपया है, और वो लोग तुम मुझे देते नहीं है, किसलिए मैं लगाने जाता हूँ, अगर तुम लोग को पैसा मुझे दो तो फिर मैं आपको भगवान की सेवा में लाऊंगा, अभी तुम क्या सोचते वो पैसा तुम्हारा है, लेकिन हर एक चीज तो कृष्ण की है, तो तुम मुझे दो लगाऊंगा। अभी तो मैंने टेम्पल बनाया ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सिंपल टेम्पल है, तो हैरान है, अच्छा ये मतलब ये सिंपल है सारा पैसा मिला दिया, तो भगवान उन्हीं को ब्लेम कर दिया, तुम देते नहीं हो इसलिए मैं पूर्ण रूप से लगा नहीं पाता, वरना तो कृष्ण की सेवा में सारा सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आप कॉन्फ्रेंस करते हो इतनी बड़ी बड़ी, ये इतने बड़े होटल में क्यों करते हो, कायर हिल्टन ऐसे होटल में? तो प्रभुपाद बोले कि देखिए ये भगवत जी का ध्यान और भागवत का ध्यान मैं सामने एक होटल के एक चेयर हेल्प के नीचे भी दे सकता हूँ, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को, आप लोग बताइए रिपोर्टर से पूछा कि अगर मैं ये ध्यान कर सुबह कॉन्फ्रेंस रखूँ पेड़ के नीचे आप मुझे कितने लोग आएंगे, आप लोग भी यहाँ पर पैरस मिशन के लिए आया है भगवान के लिए और मेरे लिए नहीं आया है। तो ये है इसलिए प्रभुपाद जी ने इतने विशाल विशाल मंदिरों की स्थापना करी कि लोग, मैं देखता हूँ हमारे नॉर्थ कैलाश टेम्पल में गोविंदा स्नैक शॉप में खाना खाने के लिए आते हैं, फिर उनको बोलो कि दर्शन कर लिए जाए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मतलब आते ही लोग इस लालच से है, लेकिन कभी किस दिन वो ऊपर चढ़ गए देखेंगे साक्षात जो है राधा पाठ करके दर्शन पाएंगे और फिर वो कह रहे हैं आनंद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमको लोगों को सेवा में लगाना चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी लगा रहे, और प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं कि जो सेल्फ रिलाइज व्यक्ति है उसके सिम्टम्स हैं, समय हो गया था 5 मिनट का अनुभव, तो सिम्टम्स जो है इसने बताए गए हैं भगवद गीता के 14 चैप्टर के अंदर 22nd श्लोक के अंदर। इससे पहले अर्जुन ने पूछा, जो इन तीनों गुणों में चले है वो किन लक्षणों के द्वारा जान जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति गुरु को किस प्रकार मानता है, मतलब के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है कि ये व्यक्ति जो है भगवान को समझ पाया है, सेल्फ रिलायंस बताया है कि मैं जो हूँ भगवान का कुछ दास हूँ। तो भगवान हमने 22 श्लोकों में पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक लोगों के समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चित अभिचलित रहता है और ये राष्ट्रपति केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा अधिक बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेरे पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो भीड़ है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, मतलब वो सेल्फ व्यक्ति है और तीनों गुणों के परे समाज से। ये बैच मार्क बताया गया है यहाँ तक व्यक्ति को जाना चाहिए, तब वो सेल्फ रिलायंस चल पाएगा और फिर भक्ति की जो और श्रेणियां है प्रेम निष्ठा वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि श्रवण कीर्तन और स्मरण सेल्फ रिलाइजेशन भगवान का सदा स्मरण है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये टारगेट बनाया है। अब देख लीजिए 2014 में 14 चैप्टर भी है, 2014 में 14 चैप्टर हमारा टारगेट रखते थे 22 से 24 लोग जो है इसमें से एक वर्ड भी हमारे जीवन में अप्लाई कर पाए तो हमारा जीवन जो है वो सुंदर हो सकता है। तो हमेशा हमें हमें याद रखना चाहिए कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं सिद्ध और साधना सिद्ध और एक होते हैं कृपा सिद्ध। तो साधना से अगर सोचते हैं अपनी भौतिक ताकत के कारण कि हम जब करेंगे बहुत बढ़िया पूजी मंग रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम ये वो और बस पूजी के उसके बाद हम क्या है सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक हम जैसे बताया कि आप ओपनिंग लाइन में पूरे गुरु गुरु को फॉलो करो गुरु, जब तक हम गुरु के बताए हुए मार्ग को नहीं चलेंगे तब तक दिव्य ज्ञान रजत प्रकाशित हमारे नहीं होगा और हम यूं ही श्रम के लिए केवल कर सकते हैं अपने आप से दूर सोच लेंगे आई एम दिव्य कोई नहीं है। लेकिन जब हम तैयारी भी कर पाएंगे कि हम अच्छा बनने के लिए नहीं, हम कितने कर रहे हैं हमारे लिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अच्छा तो कोई व्यक्ति बन सकता है एयरटेल करा के अच्छी ड्रेस में अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान हमसे खुश है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हर बार कि हमेशा जो नाम दिया गया है तुम्हें शिक्षा में था उस पर ध्यान दो। तो एक पात्र प्रकार प्रभुपाद के बाद ऐसे समाप्त होगा, एक प्रभुपाद के शिष्य जो उनका नाम था जो है और उनको बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अमेरिका में सेवा मतलब जॉब करते थे। तो जब वो अमेरिका में आए थे वो जनरल उनका नाम इस प्रकार से सब क्या है तो सारे लोग अमेरिकन लोगों का नाम ऐसे नहीं होता पॉल जॉन ऐसे नाम होते हैं तो वो हंसी मारते थे बहुत नहीं तो बड़े जीवन में बड़े पैसे थे जैसे थे कि कैसा नाम रख दिया मेरे बाप ने जनरल नाम ना मुझे मजाक कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को जब देखा कि प्रभुपाद दीक्षा जैसे हम नाम बदल देते हैं तो उन्होंने कहा वाह यही मौका है कि अपना जीवन बदल लो। तो उन्हें प्रभुपाद जी का मुंबई ज्वाइन कर लिया, प्रभुपाद के साथ रहने लगे। प्रभुपाद जी ने एक बार दीक्षा दी तो प्रभुपाद से पूछे प्रभुपाद मेरे को भी दीजिए, बोले चार महीने का पालन करेंगे, हाँ करेंगे, 16 महीने का जब करेंगे हाँ करेंगे, ठीक है तुम्हें दीक्षा देते हैं आप तो तुम्हारा नाम है हंस दूत अधिकारी। तो हंस के आगे दूत लगा दिया और कैरी के आगे अभी लगा दिया तो एक प्रकार के उनका नाम हंस दूत अधिकारी। अब वो बड़े हंस वजह सारे हंसी को डाल पड़ा गया तो बड़े परेशान अब मैं क्या करूँगा। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद ने क्लास दे रहे थे क्लास खत्म होने के बाद बोले प्रभुपाद हम खुश नहीं, प्रभुपाद ने कहा यस व्हाट यू खुश नहीं, बोले प्रभुपाद योर जीवन की मेन है दूध अधिकारी व्हाट द मीनिंग ऑफ हंस दूध का, प्रभुपाद ने रीड भागवत है ना यू विल फाइंड इट। तो उन्होंने पूरी भागवत जो है पढ़ी और जब तक नहीं पढ़ी जब तक प्रभुपाद जी के पास नहीं आए, जब पूरी भागवत पढ़ ली तो फिर प्रभुपाद उनको हंस दूध मिलेगी भागवत के अंदर। तो फिर वो आगे बोले कि प्रभुपाद मैं तो पूरी भागवत पढ़ी मुझे हंस दूध का मतलब नहीं मिला, व्हाट द मीनिंग ऑफ हंस दूध। तो प्रभुपाद ने कहा डोंट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड हंस दूध का अधिकारी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड दास, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज नाम का अर्थ है आपकी पोजिशन आपकी रियलाइज कर रहा है कि यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण एंड यू आर नॉट दिस हंस दूध का आदेश। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोले भागवत तो पढ़ने का अभी आपने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है तो क्यों मैं अगर पढ़ा होता तो आप समझ पा रहे कि आपकी स्थिति जांच की है हंस दूध अधिकारी की। फिर वो बता रहे थे कि उन्होंने दोबारा अभी वो क्वेश्चन नहीं पूछा आप सर्वेंट बन रहे श्री प्रभुपाद की। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए 2014 में हम रिजर्वेशन लिया के लिए स्पिरिचुअल रिजर्वेशन है कि हम एज अ सर्वेंट श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज और राधा गोविंद सीता रामेश्वर हनुमान कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद की सेवा करें फीलिंग दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा नॉट वी आर कमिंग हियर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के अभिलाषा से नहीं सिर्फ सेवा के लिए। Thank you very much.